ಕರುಕುಕೂಲಂ ಚಾರುವರ್ಹಾವಕೂಲಂ ಕಮತುಲಸಾರಂ ನೋಮಿ ಗೋಪೀಕುಮಾರಂ ವಂಶೀಭೂಷಿತಕರಾನ್ನವನೀರದಾಭಾತ್ ಸೀತಾಂಬರಾದರುಣಗಂಬಫಲಾಧರೋಸ್ತಾತ್ ಪೂರ್ಣೇಂದು ಸುಂದರ ಮುಖಾದರವಿಂದ ನೇತ್ರಾತ್ ಕೃಷ್ಣಾತ್ ಪರಂ ಕಿಮಪಿ ತತ್ರ ಮಹಂ ನ ಜಾನೇ ಶ್ರೀಹರಿ. ದೋ ತೀನ್ ವಿಷಯೋ ಪರ್ ಕಹನೇ ಕೆ ಲಿಯೇ ಕುಛ್ ಸಜ್ಜನೋ ಕಿ ಓರ್ ಸೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಲೋಕೋ ಕಿ ಓರ್ ಸೆ ಆಜ್ಞಾ ಮಿಲಿ ಹೈ. ಉನ್ಹೀ ಮೇ ಸೆ ಏಕ್ ಯಾ ದೋ ವಿಷಯೋ ಪರ್ ಕುಛ್ ಕಹ ದೇನಾ ಹೈ. ಕಿಸೋ ನೆ ಪೂಛಾ ಅಪ್ನೆ ನಿಯಮೋ ಮೇ ಏಕ್ ಚೀಜ್ ಹೈ ಕಿ ದೂಸರೆ ಕೆ ಹಕ್ ಕಾ ಪೈಸಾ ಜಾನ್ ಬೂಝ ಕರ್ ನಹೀ ಲೇನಾ. ಇಸ್ ಪರ್ ಏಕ್ ಸಜ್ಜನ್ ನೆ ಪೂಛಾ ಹೈ ಕಿ ಯೇ ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಹೈ, ದೂಸರೆ ಕಾ ಹಕ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ. ತೋ ಆಜ್ ಕೆ ಜಮಾನೆ ಮೇ ತೋ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಪರ್ ದೂಸರೆ ಕೆ ಹಕ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಪರ್ ಕುಛ್ ಸಮಜನಾ ಹೀ ಬೇಕಾರ್ ಹೈ. ಜೋ ಅಪ್ನೆ ನಾ ಆ ಸಕೆ ವೋ ಅಪ್ನೆ ಹಕ್ ಕಾ ನೀ, ಬಾಕಿ ಸಾರಾ ಅಪ್ನೆ ಹಕ್ ಕಾ. ಆಜ್ ತೋ ಯೇ ಚೀಜ್ ಹೈ ಕಿ ಕಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೇ ಭಿ ಹಮ್ ಲೇ ಸಕೇ ವೋ ಸಾಯಾ ಹಮಾರೇ ಹಕ್ ಕಾ. ನಾ ಲೇ ಸಕೇ ನಾ ಪಾ ಸಕೇ ಉಪಾಯ ನಹೀ, ವೋ ಅಪ್ನೆ ಆ ದೂಸರೆ ಕಾ ಹಕ್ ಕಾ ಹೋ ಗಯಾ. ಆಜ್ ತೋ ಹಮಾರೀ ಯೇ ಹಸನೇ ಕಿ ದಶಾ ನಹೀ, ಯೇ ರೋನೆ ಕಿ ದಶಾ ಹೈ. ಏಕ್ ಐಸಿ ಕಥಾ ಆತೀ ಹೈ, ಏಕ್ ಕೋಯಿ ರಾಜಾ ರಹೆ ಸತ್ಸಂಗಿ ಅಚ್ಛೇ ಪುರುಷ. ಏಕ್ ದಿನ ಬಾತ್ ಕಿಸಿ ಸಂತ ಸೆ ಹೋ ರಹೀ ಥೀ, ಬೈ ಹಕ್ ಕ್ಯಾ ಚೀಜ್ ಹೈ, ಹಮೇ ಕಹೀ ಹಕ್ ಕಿ ರೋಟಿ ಮಿಲ್ ಜಾಯೆ ಬೈ ಪವಿತ್ರ. ತೋ ಸಂತ ನೆ ಬತಾಯಾ ಕಿ ತುಮ್ಹಾರೆ ಇಸ್ ಶಹರ್ ಮೇ ಅಮುಕ್ ಮೊಹಲ್ಲೆ ಮೇ ಏಕ್ ಬುಢಿಯಾ ರಹತಿ ಹೈ. ವೋ ಬುಢಿಯಾ ಹೈ ತೋ ಬೈ ಗರೀಬ್, ಪರ್ ವೋ ಬುಢಿಯಾ ಅಪ್ನೆ ಹಕ್ ಕಾ ಖಾತಿ ಹೈ, ಉಸ್ಕಿ ರೋಟಿ ಹಕ್ ಕಿ ಹೋತಿ ಹೈ, ತುಮ್ ವಹಾಂ ಜಾಓ. ರಾಜಾ ಬಡೇ ಗುಣಗ್ರಾಹಿ ಥೇ, ಉತ್ಸುಕತಾ ಥೀ ಜಾನ್ನೇ ಥೀ, ಹಕ್ ಸಮಝನೇ ಥೀ. ತೋ ಪಹುಂಚೆ ಬುಢಿಯಾ ಕೆ ಪಾಸ್. ಬುಢಿಯಾ ಸೆ ಬೋಲೆ, ಮೈಯಾ ಮೈನೆ ಸುನಾ ಹೈ ಕಿ ತುಮ್ ಹಕ್ ಕಾ ಖಾತಿ ಹೋ, ಔರ್ ತುಮ್ಹಾರೇ ಯಹಾಂ ಹಕ್ ಕಿ ರೋಟಿ ಮಿಲ್ ಸಕ್ತಿ ಹೈ. ಮೈ ಉಸೆ ಮಾಂಗನೆ ಆಯಾ ಹೂ, ಅದರ ದೇ ದೋ ಹಕ್ ಕಿ ರೋಟಿ, ಪವಿತ್ರ ಹೋ ಜಾಊಂ. ತೋ ಬುಢಿಯಾ ನೆ ಕಹಾ, ಬೇಟಾ ಏಕ್ ರೋಟಿ ಮೇರೇ ಪಾಸ್ ಹೈ ಜರೂರ್, ಪರ್ ವೋ ಆಧಿ ಹಕ್ ಕಿ ಹೈ, ಆಧಿ ದೇ ಹಕ್ ಕಿ, ಪೂರಿ ಹಕ್ ಕಿ ಆಜ್ ನಹೀ ಹೈ. ಕಹಾ, ಯೇ ಪೂರಿ ಹಕ್ ಕಿ ಔರ್ ಆಧಿ ಹಕ್ ಕಿ ಕಾ ಕ್ಯಾ ಅರ್ಥ. ತೋ ಬುಢಿಯಾ ಕಹತಿ ಹೈ ಕಿ ಮೈ ಸೂತ್ ಕಾಟ್ ಕರ್ ಉಸೆ ಬೇಚ್ತಿ ಹೂ, ಜಿತನೆ ಮಜ್ದೂರಿ ಕೆ ಪೈಸೆ ಮಿಲ್ತೆ ಹೈ ಉನ್ಸೆ ಮೈ ಅಪ್ನಾ ಕಾಮ ಚಲಾತಿ ಹೂ, ಮೈ ಸಮಜ್ತಿ ಹೂ ಮೇರೆ ಹಕ್ ಕಾ ಹೈ. ಮೆಹನತ್ ಕರ್ಕೆ ಕಿಸಿ ದೂಸರೆ ಪರ್ ಕಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಾ ಕೋಯಿ ಬೋಝ ನ ಡಾಲ್ ಕರ್ ಮೆಹನತ್ ಕಾ ಪೈಸಾ ಮೈ ಕಮಾ ಕರ್ ಖಾತಿ ಹೂ, ಕಾಮ ಚಲತಾ ಹೈ. ಏಕ್ ದಿನ ಏಕ್ ಜುಲೂಸ್ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ, ಶಾಮ್ ಹೋ ಗಯಿ ಥೀ, ಮುಝೆ ದಿಯಾ ಜಲಾ ಲೇನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಥಾ. ಉದಯ ಸೆ ಜುಲೂಸ್ ನಿಕಲಾ, ಉಸ್ಮೆ ಮಸಾಲೆ ಥೀ, ಮಸಾಲೋ ಕಿ ರೋಶನಿ ಯಹಾಂ ಪಡ್ ರಹೀ ಥೀ, ತೋ ಮೈ ದಿಯಾ ಜಲಾಯಾ ನಹೀ, ಉಸ್ ರೋಶನಿ ಮೇ ಮೈನೆ ಸೂತ್ ಕಾಟ್ ಲಿಯಾ. ಜಿತನಾ ಸೂತ್ ಮೈನೆ ಉಸ್ ರೋಶನಿ ಮೇ ಕಾಟಾ, ಉತ್ನಾ ಮೇರೆ ಹಕ್ ಕಾ ನಹೀ, ಯೇ ಬೇಹಕ್ ಕಾ ಹೈ. तो राजा के समझ में आया कि हत्ती चीज हमारे यहाँ तो ऐसी बहुत थी। महाभारत की एक कथा है, हमारे दो बड़े भारी महर्षि हुए मृतिकार, बड़े कट्टर, उतने कट्टर जो जिन लोगों ने समय पर न पहुंचने के लिए दंड रखा था संसद ध्वज के यहाँ तेल के कड़ाहे में डाल के डाल दिया जाए मुश्किल समय पर ना आए, तो जर्मनी स्टेनलेस की कथा है, तो धनुआ को डाला गया था उसमें। तो इतने बड़े कट्टर से शंख और लिखित दोनों में बंटवारा हो गया। जरा सुनिएगा ध्यान से, आज का युग और उस जमाने की चीज। शंख और लिखित दोनों भाइयों का धन का मकान का जमीन का था ही क्या, जो कुछ था बंटवारा हो गया। दोनों भाइयों में बहुत बड़ा प्रेम, एक दूसरे के लिए प्राण देने को प्रस्तुत। बंटवारा हो गया तो क्या हुआ, भाई ये है। एक दिन छोटे भाई ने बड़े भाई के बगीचे में से एक पेड़ से एक फल तोड़ लिया, खा लिया। जब बड़े भाई आए तो उनके पास जाके कह दिया कि मैंने आज आपके बगीचे में से एक फल तोड़ के खाया। बड़े प्रसन्न हुए, भाई ने खाया और क्या चाहिए। लेकिन वो तो भाई को चाहते हैं धर्म में अत्यंत प्रतिष्ठित जीवन वाला भाई, फल खाने में आ सकते नहीं। वो मांग करके कह करके चाहे सारे के सारे फल ले ले, त्याग में कोई बात नहीं, प्रेम में कोई भेद नहीं। लेकिन वो तो स्मृतिकार है ना, लोगों को धर्म सिखलाने वाले। तो पूछते हैं भाई से, शंख ने पूछा लिखित से, अच्छा बताओ भैया, तुमने हमारे हमसे बिना पूछे जो पेड़ में से फल तोड़ के खा लिया, इस क्रिया की क्या संज्ञा होती है, इसका इसको इसका इसका क्या नाम दिया जाए। मृतिकार है ना, पूछते हैं कि तुम्हारी इस क्रिया का नाम क्या है। तुमने सोच के कहा, महाराज चोरी, बंटवारा हो चुका, आपकी संपत्ति है, बिना आपसे मांगे बिना लिए अपनी इच्छा से ले लेना चोरी है। तो कहा, फिर चोरी का दंड क्या होता है, इसी से पूछते हैं। कहा, चोर के हाथ कटवा दिए जाए ये दंड होता है, तो जाओ हाथ कटवा के आओ। कितनी भीषण बात है, आज के युग का आदमी इस बात को समझ नहीं सकता कि एक फल अगर उसने खा लिया तो प्रकारांतर से उसको फैला उसे आगे बेचारे के हाथ कटवा देना चाहता है। ये कितना निशंस है, कितना निर्दयी है, कितना अत्याचारी है, कितना स्वार्थी है, ये सब बात हम लोग आज कह सकते हैं। पर लिखित ने ये बात नहीं कही, लिखित ने सोचा अपने मन में कि भाई का मुझसे बड़ा उपकार, मुझे धर्म के पथ से जरा भी विचलित होते भाई देख नहीं सकते, मुझे बचाते हैं, कितना बड़ा उपकार। उपकार मानकर हाथ कटवाने के लिए मुनि जाते हैं राजा के पास। राजा से जाके कहते, स्वयं चोरी स्वीकार करते हैं, कहा मैंने चोरी की है, अपने भाई के यहाँ मैंने फल चुराया है, आप मेरा हाथ कटवा दें। राजा ने बातें सुनी, कहा भाई कोई बात नहीं है, भाई से कह दूं। बोले, कह देने से क्या होता, मैंने चोरी की ना। तो कहा नहीं ऐसी बात नहीं। तो कहा, तुम कौन हो ये कहने वाले, मृतिकार हम हैं, कानून बनाने वाले हम हैं, तुम्हारा काम है कानून का पालन करना कराना, तुम अपना काम करो, तुम कानून के बीच मत पड़ो। राजा ने हाथ कटवा दिए, लिखित के हाथ कट गए, कटे हाथ बह रहा है, नीले हाथ हैं, पीड़ा हो रही है और मन में बड़ा हर्ष है और भाई के प्रति अत्यंत कृतज्ञता का भाव है कि भाई ने मुझको बचा दिया आज। पाप से बचा दिया। वापस आ गया भाई, बड़े प्रसन्न, बड़े प्रसन्न, मन में बड़ा दुख, हाथ कट गए इसका, अपनी हाथ कटे हैं, विकृत के हाथ कटे, शंख के हाथ कटे हैं, बड़ी पीड़ा उनके मन में भाई के है, पर बड़ा संतोष है कि मेरा भाई कितना ये धार्मिक है, मेरे कहने से इसने अपनी भूल मान ली, भूल उसके सामने आ गई और दंड ले लिया। प्रातःकाल हुआ, श्राद्ध था पिताजी का, लिखित ने कहा, शंख ने कहा, जाओ भैया तर्पण करके आओ, भाई की आज्ञा जानते हैं, हाथ तो नहीं है, तर्पण कैसे हुई, अंजलि दी कैसे जाएगी। गए नदी पर, गए जो ही नदी में हाथ डाले, हाथ जो कहते हैं ये हट हट। भीष्म के बुद्धि में भ्रम हो गया, कैसे हो गया, एक कथा एक जगह आती है कि महाराज भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए धर्मोपदेश कर रहे थे, बड़ी सुंदर सुंदर बातें कह रहे थे, आर्त को किस प्रकार बचाया जाए, कैसे रक्षा की जाए, ये था प्रसंग। द्रौपदी को हंसी आ गई, द्रौपदी को हंसते देखकर भीष्म ने देख लिया, भीष्म ने कहा बेटी हंसी क्यों, द्रौपदी सकुचा गई, बताना नहीं चाहती, नहीं दादाजी ऐसे ही, पर नहीं, कुल वधुएं जो होती हैं वो बेकार नहीं हंसा करती, ये कुल वधुओं का लक्षण होता है कि वो बिना काम हंसती नहीं, तुम्हारी हंसी में कोई रहस्य है बताओ। कहा दादाजी बात तो है पर संकोच होता बनी बेटी, नहीं संकोच बताओ। फिर मुझे इस बात पर हंसी आ गई आपके उपदेश पर कि आज आप इतना भारी उपदेश कर रहे हैं, और जिस समय मेरी साड़ी खींची जा रही थी और मैं रो रही थी दादाजी मुझे बचाओ दादाजी बचाओ, उस समय ये ज्ञान कहाँ गया था। मैं समझती हूँ कि आपने पीछे सीखा, मुझे आज इस ज्ञान को देखकर हंसी आ गई। भीष्म की आंखों में आंसू आ गए, भीष्म ने कहा बेटी तुम सच कहती हो, उस समय मुझे ये ज्ञान नहीं था, पर मैंने पीछे सीखा उसे बात नहीं है, जानता पहले था पर दुर्योधन का अन्न खा रहा था, वो अन्न देहक का अन्न था, अन्यायोपार्जित था, पांडवों के स्वत्व को छीन कर उसने अपना आधिपत्य किया था, वो देहक का अन्न था, उसने मेरी बुद्धि बिगाड़ दी। अब वो इस रण में उसका बना हुआ सारा खून निकल गया, बह गया, अंतकरण पवित्र हो गया, ज्ञान जाग उठा, अब मैं तुमसे कहता हूं ये हक की बात, किसी का भी किसी प्रकार से भी अपने पास हक आ जाए तो ये मानते थे पहले जमाने के लोग ये घर में विष आ गया। ये आज तो हम अपने को उन्नत मानते हैं, और यही दुर्दशा इसलिए है हमारी कि बुद्धि हमारी तमसा छन्न हो गई है, सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि हिसा पार्थ तामसी, भगवान ने कहा कि उल्टी बुद्धि होती है, तमसा छन्न बुद्धि होती है, तब सब कुछ उल्टा दिशा है। तो आज हम गिर तो रहे हैं, हमारा नैतिक पतन हो रहा है, पर आज का समाज, आज का नेता, आज का अग्रगण्य पुरुष कहता है कि हम उन्नत हो रहे हैं, हमारी उन्नति हो रही है, उत्थान हो रहा है, ये तो हक वाले की बात। तो जहां तक बने जानबूझकर दूसरे के हक का कोई पदार्थ भी नहीं लेना चाहिए, ये उनके प्रश्न का उत्तर है। दूसरी बात वो जरा और ढंग की बात बिल्कुल इसके विपरीत है। कल या परसों मैंने कहा था कि भाई विशुद्ध प्रेम के राज्य में सुख भोग, अपना सुख भोग भी प्रेमास्पद के सुख के लिए होता है। इसी पर आज एक सज्जन ने मुझको लिख कर दिया, ये बात ठीक समझ में नहीं आई, फिर से बताओ। तो उस दिन बता तो दी थी लेकिन संक्षेप में फिर से कह दी जाती है। जैसे एक कोमल बिछौने पर हम सो रहे हैं, बड़ा सुंदर मखमली बिछौना है और उससे हमारे त्वगिंद्रिय को बड़ा सुख मालूम हो रहा है, बड़ी मुलायम चीज है, अच्छा लग रहा है, उसमें सुख की अनुभूति होती है। बहुत ख्याल करके देखिएगा, सुख की अनुभूति होती है हमारी जो ये त्वक है, चमड़ी है, इसके साथ स्पर्श हो रहा है कोमल गद्दे का, उससे सुख हमको मिल रहा है। पर उस प्रेमी के चित्त की विचित्र दशा है, उस सुख भोग के समय भी उसका मन उस सुख भोग में नहीं रहता। वो उस समय देखता है अपने प्रेमास्पद के चित्त की ओर, उनके मुख की ओर, कि मेरी सुख भोग में उनको सुख है क्या। उनको सुख यदि नहीं है तो ये सुख भोग उसके लिए कोई वस्तु नहीं, त्याग देगा। ये दुख में तो आदमी इस बात को समझ लेता है कि भगवान दुख देते हमारे कल्याण के लिए, उनको सुख होता है तो हम दुख को सुख मान के भोग लें, पर सुख को सुख न मान के भोग है, ये बड़ी विचित्र चीज है, ये समझ में आनी बड़ी मुश्किल है। हमें सुख प्राप्त हो रहा, हम खा रहे हैं, हमारे जीव के द्वारा हमें स्वाद प्राप्त हो रहा है, तो स्वाद सुख का ग्रहण वो प्रेमी तभी करता है जब स्वाद सुख से उस प्रेमास्पद को सुखी होता देखता है, जानता है, अनुभव करता है, वो तो पहचान लेता है। प्रेमी जो है ये अभी हम लोग प्रेमी नहीं है ना, हम लोगों को प्रेम राज्य की बातों का पता नहीं, तो सुनी सुनाइए मैं कहता हूं, इसलिए वो पूरी बात तो तब आवे कि जब वो स्वयं उसके साथ घटे। प्रेम का लक्षण बताया है नारद जी ने, मूका स्वादनवत, प्रेम का कैसा स्वाद है, उसमें क्या सुख है, कैसा है वो, तो कहा गूंगे के स्वाद की तरह है। गूंगा जिस प्रकार से कह नहीं सकता, अनुभव करता है, जीभ से चखता है, स्वाद का अनुभव करता है, कह तो हम नहीं सकते, क्योंकि जिह्वा के द्वारा जिस रस की अनुभूति होती है उस रस का वर्णन करने के लिए न शब्द है और न जीभ में शक्ति है। मिश्री खाते हैं, गुलकंद खाते हैं, चीनी खाते हैं, शहद चखते हैं, अब इनमें सब में मिठास है, कहेंगे भाई बड़ा मीठा था, उससे ये अच्छा, हमें तो ये अच्छा लगा, पर कोई वाणी बता सकती है क्या कि शहद का मीठा कैसा और चीनी का मीठा कैसा और मिश्री का कैसा, गुलकंद का कैसा, आम का कैसा मीठा, तो बताया तो नहीं जाता जीभ वाले के द्वारा भी स्वाद का स्वरूप, फिर गूंगा हो कहां से बतावे। तो प्रेम जो है ये गूंगे के आस्वादन के भांति, गूंगे के स्वाद के भांति, ये अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, ये नारद जी का सूत्र है। पर उसमें छह बातें हैं, ये बहुत समझने का विषय है। हम लोग प्रेम प्रेम बहुत करते हैं, लेकिन प्रेम का स्वरूप तो जानना लग रहा, प्रेम के स्वरूप की छाया भी हम नहीं जानते। रामचरित मानस में पीछे कहूंगा प्रसंग, एक प्रसंग आया, ये भरत जी महाराज वन में जा चुके, बातचीत हो रही, कुछ निर्णय हुआ नहीं, इतने में जनक जी बीच में आ गए। जनक जी आ गए तो महारानी कौशल्या को जरा मन में आश्वासन हुआ कि वशिष्ठ की बात तो कुछ चलती नहीं है, वशिष्ठ गुरु की तो बोलने चाहने की बात पता करता नहीं। मुनिमति तीर ठाढ़ी अगला से, अब तो यदि गुरु महाराज ये जनक महाराज कुछ कर दें, ये अगर राम को समझा दें और राम यदि भरत की बात मान लें तो भरत का जीवन रह सकता है, चिंता भरत की है। तो सीता की माता सुनैना जी आ रही, आई मिलने के लिए। जब जाने लगी तो कौशल्या ने बड़े स्नेह से कहा अपनी समझन से कि आप जाके महाराज से कह दो कि महाराज जरा सा राम को समझा दें, इस प्रकार से काम हो जाए, भरत का जीवन रह जाए। पुरानी गई, उसने एकांत में अपने पति से अपनी समझन का संदेश कह दिया। वहां पर कुछ जनक के वाक्य हैं, तुलसीदास जी ने बड़ी मार्मिक भाषा में लिखे, उसमें से एक चौपाई सुनाता हूं। वो कहते हैं, धर्म राज नल ब्रह्म विचारू, यथा मति मोर प्रचारू। धर्म राज नल ब्रह्म विचारू, यथा मति मोर प्रचारू। तो मति मोर भरत महिमाही, कही काही छल छुवत न चाही। कलम तोड़ तो मति मोर भरत महिमाही, कही काही छल छुवत न चाही। प्रीति प्रतीति भरत रघुबर की, कही न जाय कछु जायन तरकी। ये भरत और राम के प्रेम पर विदेहराज ज्ञान शिरोमणि जनक के वाक्य हैं। तो जनक बड़ी नम्र भाषा में अपनी पत्नी से भी कैसे बोलना चाहिए, बोलना एक कला है, बोल के अपनी आबरू बिगाड़ दे, दूसरे के आबरू ले ले, जीवन भर के लिए लड़ाई बांध ले, हमेशा के लिए उसको अपना बना ले, ये बोलने की कला है। और कला के साथ होना चाहिए शुद्ध हृदय, केवल कला तो काल बन जाती है। तो बड़ा बड़े सुंदर शब्दों में वो कहते हैं रानी नम्रता। राजनीति में धर्म के विचार में और ब्रह्म ज्ञान में ये कुछ मेरी बुद्धि काम करती है, यथामति मोर प्रचारो, इनमें कुछ कुछ मेरा प्रवेश है, मेरी बुद्धि कुछ काम करती है। अर्थात कोई राजनीति के उलझे में आ जाए तो मैं सुलझा सकता हूं, कोई धर्म की समस्या आ जाए समाधान कर सकता हूं, और कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरे पास आवे तो उसे भी ब्रह्म ज्ञान मेरे द्वारा मिल सकता है, कहने का अर्थ ये नम्र भाषा में। परंतु वो मेरी बुद्धि तो मति मोर भरत महिमाही, कहहिं काहिं छल छुवत न चाही। मेरी वो बुद्धि भरत की महिमा का बखान तो क्या करे, उसकी छाया को भी छल से भी छू नहीं सकती। राम और भरत की प्रीति कहने में तो आती, तर्कना में नहीं आती, तो प्रेम अंग्रवाद से होता है, प्रेम कहने में नहीं आता। तो प्रेम स्वरूप अग्रवचनीय, इसलिए प्रेम की बात तो करना सहज है, प्रेमी होना बड़ा मुश्किल। तो नारद जी ने बताया उसमें छह बात होनी चाहिए कि प्रेम के बाद जो कुछ हम करते हैं ना, ध्यान रखें इस बात का। प्रेम की मूल भित्ति तो है त्याग। प्रेमास्पद के सुख के लिए अपना परित्याग, अपने सर्वस्व का नहीं अपने ही परित्याग। अहम की चिंता से सर्वथा मुक्त हो जाए। मोक्ष का इच्छुक भी चाहता है, मुमुक्ष पुरुष चाहता है कि मुझे बंधन से मुक्ति मिले। मैं बंधन में हूं, बंधन की अपेक्षा है मुक्ति की सिद्धि के लिए। अगर बंधन नहीं तो मुक्ति का है कि, और बंधन है तो किसी व्यक्ति का है, किसी अहम का है। तो मुक्त होना जो चाहता है उसके पास अहम है गया नहीं, पर प्रेमी के पास अहम रहता है, अगर बचनी है तो त्याग इसकी वृत्ति है। तो इसमें छह बातें प्रधान है। पहली बात है गुण रहितम। श्री कृष्ण भगवान हैं, ठीक भगवान हैं, और श्री गोपांगनाएं भगवान जानती थी, ये भी ठीक है। नखल गोपिका नंदनो भगवान अखिल देह नाम अंतरात्मदृक, और भी ऐसे बहुत से प्रसंग हैं। परंतु जानती हुई भी गोपिकाएं नहीं जानती। अगर कहीं ये प्रकट हो जाए, सिद्ध हो जाए कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, तो क्या गोपिकाएं उनके प्रेम को छोड़ देंगी? वो तो इस बात को भुला देना चाहती कि ये भगवान है। भुलाए बिना वो प्रियतम प्रेष्ठ और हमारे प्रत्येक पदार्थ को ग्रहण करने वाले वो बन नहीं सकते। तो गोपिकाओं को भगवान में क्या क्या गुण है ये जानने की, देखने की न इच्छा है, न आकांक्षा है, न आवश्यकता है। वो तो बस श्री कृष्ण हैं, क्या हैं, हमारे हैं, बस। अच्छे हैं, बुरे हैं, गुण हैं, गुणवान हैं, गुणहीन हैं, ईश्वर हैं, अनीश्वर हैं, राजा हैं, अहिर के बालक हैं, कोई बात नहीं, हमारे प्रियतम हैं, बस। गुण रहितम, जहां गुण देखकर प्रेम होता है ना, वो प्रेम सहज नहीं, वो प्रेम अहेतुक नहीं, वो तो गुण के हेतु से। अगर गुण नदी खाते प्रेम गया, वो प्रेम तो गुण की पूजा करता है, प्रेमास्पद की नहीं करता। हजार दोष करके प्रेमास्पद आ जाए। एक बड़ी सुंदर मुझे बात याद आ गई बीच में, ये पतिव्रता स्त्रियों के काम की बात है। वो प्रसंग का दूसरा था, बड़ा उत्तम। स्वामी श्रद्धानंद का नाम आप जानते होंगे, श्रद्धानंद जो पहले महात्मा मुंशी राम से गुरुकुल के प्रतिष्ठाता, जिनको एक मुसलमान ने गोली से मारा। उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है महाराज, संक्षेप में कहता हूं। उनके पिता सब इंस्पेक्टर थे पुलिस बनारस, ये वहां रहते, नौजवान विवाह हो गया, शराबी, खुद लिखा है, किसी दुराचार के स्थान से लौट करके शराब पी करके आए, पत्नी आई हुई थी बहुत दिन के नहीं, विवाह के कुछ दिन बाद है। ये आए बेहोश, बेहोश आए, आते ही उनको उल्टी होने लगी, उसने अपने हाथ सामने कर, फिर आंचल सामने कर, उल्टी कराई, सब कपड़े खराब हो गए, उनको धोया, धोकर कर दूसरे कपड़े पहना दिए और सिर पर पट्टी वट्टी रखी, वो बकते रहे, बकते बकते सो गए। ये पैर दबाती बैठी, से दबाती बैठी, 2 बजे नशा उतरा, मुंशी राम लिखते हैं, 2 बजे नशा उतरा, देखते हैं वो लड़की